महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर दो। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, भूतबलि प्रणीतं तं बंधतत्वप्रकाशकं, महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का छह नंबर का खंड है। इसमें यह चौथा प्रदेश बंध अधिकार चल रहा है और महाबंध के छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या सात पर हम आ गए हैं। देखो, शुरुआत करने के पहले हम देखते हैं, ये महाबंध नाम का जो शास्त्र है, इसका दूसरा नाम है महाधौला, जो कर्णान योग के महान ग्रंथ है उसमें से धौला की 16 पुस्तकें हैं, जय धौला की 16 पुस्तकें हैं, और ये महाधौला या महाबंध की 7 पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले में जो लिखित रूप से शास्त्र रचना हुई थी वो तो कुनकुंद आचार्य के भी पहले, जिसको कहीं 2000 वर्ष के भी पहले, ये सबसे पहले जिसको प्रथम श्रुतस्कंद कहते हैं लिखित रूप से, वो षट खंडागम, 6 खंड लिखे गए थे, उसमें से ये छठा खंड है। पहले 5 खंडों पर जो टीकाएं लिखी थी उसका नाम है धौला, जिसके इतने बड़े बड़े 16 वॉल्यूम्स उसके है, और जय धौला है वो तो अलग से ग्रंथ बताए है, वो तो चूर्णी सूत्र और उसके ऊपर कषाय पाहुड़ पर वो रचना थी। ये मूल यानी वो जो टीकाएं हैं, परंतु ये मूल ग्रंथ है जो भूतबलि आचार्य ने लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय ऐसी नौबत आई थी कि जो आगम के ज्ञान बहुत कम हुआ था, कितने ही मुनियों को एक अंग का कुछ ज्ञान बाकी था, तो धरसेन आचार्य को विकल्प आया कि ये सब लिखित रूप से रहे तो अच्छा है, तो उन्होंने 2 मुनियों को ये बातें पढ़ाई और उन्होंने ये सब लिख रखी। उसमें से जो भूतबलि आचार्य है उन्होंने इसकी रचना की है। पहले हमने प्रकृति बंध को देखा, बंध जो 4 प्रकार का होता है, एक होता है प्रकृति बंध, 8 कर्म या उसके जो उत्तर प्रकृतियां है उसको कहेंगे प्रकृति, दूसरा है प्रदेश बंध, उसमें कितने नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं, कितनी संख्या में, उसको कहेंगे प्रदेश बंध, स्थिति कितनी बनती है उसको स्थिति बंध कहेंगे, और उसमें कितना अनुभाग फलदान शक्ति होती है उसको अनुभाग बंध कहते हैं। अब यहाँ अपना विषय जो है इस पुस्तक का, ये प्रदेश बंध का चल रहा है। अभी हमने शुरुआत ही की है तो यहाँ तो मूल प्रकृतियों के बंध की बात थी, उसमें ये बात बताइए कभी जीव को 8 प्रकृतियां बनती है जब आयु बंधना है, तो आयु हमेशा नहीं बनती, ज्ञानावरण दर्शनावरण है, मोहनी अंतराय है, वेदनी है, आयु छोड़कर नाम गोत्र है, ये 7 कर्म हर समय बनते हैं, परंतु आयु कभी कभी बनती है, उसके नियम है अलग से। तो उसमें अभी तो हमारा विषय क्या चले, प्रकृति का नहीं, प्रदेशों का यानी नंबर ऑफ परमाणुओं का, तो उसमें जब 8 कर्म बनते हैं तो आयु सहित सभी अन्य 7 भी बनते हैं, तो उसमें प्रदेशों का बंटवारा कैसे होता है, तो सबसे कम आयु को जाता है, उससे अधिक नाम और गोत्र को समान रूप से जाता है, उससे अधिक ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय को वो समान रूप से जाता है, उससे अधिक मोहनीय को और सबसे अधिक वेदनीय को, उसका कारण भी हमने कल देख लिया। अब बात यह है कि ये कितने परमाणु जीव ग्रहण करता है, कम या अधिक, जिसको हम समय प्रबद्ध कहते हैं, एक समय में जितने परमाणुओं का ग्रहण होता है उसका नाम है समय प्रबद्ध, एक समय में बंधने वाले, वो कितने होते तो अनंतों में होते हैं। तो अनंत कारमाण वर्गणा जीव ग्रहण करता है और एक एक कारमाण वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं, कितने अनंत याद है ना, अभवियों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग, उतना वाला जो पर्टिकुलर अनंत है, उतने परमाणुओं की एक वर्गणा होती है कारमाणु वर्गणा, और इतने अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होता है, और जीव एक समय में इतने परमाणुओं का ग्रहण करता है, यानी इतने परमाणु कर्म रूप से परिणमित होते हैं। ग्रहण करता है का अर्थ क्या है? कारमाणु वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित होती है, उसका कारण क्या हमने देखा था? आश्रय जिसको कहेंगे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके निमित्त से। अब यहां मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय के कारण, यानी जो सब मिलकर हम कषाय कहेंगे उसको, तो उसके कारण स्थिति और अनुभाग में अधिक स्थिति या कम स्थिति, अनुभाग कितना, वो उससे नक्की हो जाता है, और कितने परमाणु आएंगे, कौन सी प्रकृति आएगी, वो तो योग से निश्चित होता है। तो यहाँ प्रकृति बंध में तो हम अभी, यहाँ आपने तो पहली पुस्तक में प्रकृति बंध देखा था, फिर स्थिति बंध की बात दूसरी तीसरी पुस्तक में देखी थी, और अनुभाग बंध चौथी पांचवी पुस्तक में देख लिया। अभी यहाँ हमारा विषय है प्रदेश बंध का। तो प्रदेश बंध यानी कितने अधिक परमाणु बनते हैं या कम ग्रहण होते हैं, वो तो योग के अनुसार होते हैं, इसलिए इसके साथ साथ योगों की भी प्ररूपणा यहाँ होगी। तो योग क्या है, हमने देखा था कि जीव के प्रदेशों की जो चंचलता है उसको योग कहते हैं, परिस्पंदन भी कहते हैं, और उसके निमित्त से क्या होता है, तो कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है। जैसे हमने देखा था ना, लोहे में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति नहीं है, परंतु उसमें हम जो इलेक्ट्रिक वायर ऑन कर देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट डालते, तो उसमें मैग्नेटिक पावर हो जाती है। ऐसे ही कर्म के उदय में जीव में कर्म को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है, तो उसको योग कहते हैं। वैसे योग गुण है, और उसका स्वभाव परिणमन क्या है, तो निष्कंप अवस्था, क्योंकि योग गुण है तो सिद्धों में भी है, पर सिद्धों में योग नहीं है। योग नहीं है का अर्थ क्या है? चंचलता नहीं है। जैसे हम आपको पूछते हैं, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है? ब्लड प्रेशर सबको होता है, परंतु हाई ब्लड प्रेशर को कहेंगे हमको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। वैसे योग सबको है, परंतु निष्कंप अवस्था उसका स्वभाव परिणमन है, जो अयोग के उल्लेख के और सिद्धों के होता है, और जो कंपन रूप अवस्था है संयोग केवली तक, तो उसको योग है ऐसा कहने की पद्धति है। अब ये योग है या नहीं, क्या है, उसकी चर्चा भी हमारी चलेगी यहाँ पर। देखो, ये कल हम तीन पेज पर हमने शुरुआत की थी स्थान प्ररूपणा की, तो उसमें योग स्थान की प्ररूपणा की बात वहां आई थी, योग स्थान और प्रदेश बंध प्ररूपणा। फिर पांचवी पुस्तक कल हमने देखा ना, पांचवी पेज पर ये योग स्थान की जो प्ररूपणा चलेगी उसके विस्तार से बात बतानी है, तो उसमें 10 अलग अलग विषयों को समझाया गया है। पहला था अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, ये योगों को नापने का तरीका क्या है, जैसे कर्मों की भी शक्ति नापते हैं तो उसके अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, ज्ञान कितना है नापेंगे तो ज्ञान के अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। प्रतिच्छेद क्या होते हैं कि सूक्ष्म में सूक्ष्म अंश उसका जो है उसको कहेंगे प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा विभाग नहीं होता उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद। तो हमको यहाँ योग की शक्ति नापनी है, कितना योग है, कम है ज्यादा है, तो उसको नापने का यूनिट क्या है, एकक क्या है, उसका माप क्या है। जैसे हम लेंथ मापनी है हमको, कितना लंबा है हम, समय का अविभाग प्रतिच्छेद नहीं होता, समय इटसेल्फ एक छोटे में छोटा काल का अंश है, काल का अंश है वो। आत्मा का अगर कहना है तो आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, हर एक की अपनी अपनी शक्ति है, वो शक्ति कैसे नापेंगे हम, तो अविभाग प्रतिच्छेदों में। तो आत्मा वो एक उसका यूनिट बनाया, एक जैसे वही मैं बताती हूँ, जैसे हमको अभी हमने काल नापना है तो समय हमने छोटे में छोटा अंश समय है। अब हमको ये कितना लंबा है नापना है तो आप कहेंगे मीटर में नापो, हम कहेंगे सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, हम कहेंगे उसमें एक मिलीमीटर में नाप सकते हैं। अभी वो तो मिलीमीटर का भी लाखवा हिस्सा किया ना वो कोरोना के लिए, तो छोटे में छोटे की जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो गए तो हम कहेंगे प्रदेश ही सबसे छोटा यूनिट है, किसके लिए, लंबाई नापने के लिए। अब यहां हमको क्या नापना है, शक्ति नापनी है, किसकी, ज्ञान की। तो तो ज्ञान में कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, तो अनंत होते हैं। नहीं, ज्ञान गुण के भी अपने हैं ना, वो प्रकट कितने, ज्ञान गुण में कितना है तो केवल ज्ञान जितने हैं, या उसमें हर समय केवल ज्ञान उत्पन्न हो गए, तो पर्याय में कितने प्रकट है उसको हम कहेंगे इसके अविभाग प्रतिच्छेद है। जिससे केवल ज्ञान, हाँ उसी में मापते हम, केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है, उसमें अविभाग प्रतिच्छेद इतने अनंत है, सबसे बड़ा अनंत है। आप कहेंगे वो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, उसमें भी ज्ञान है कि नहीं है? बिल्कुल है, उसके अविभाग वो भी अनंत है, पर वो अनंत और वो अनंत में डिफरेंस है। तो अगर हमको, जैसे हमको कलर देखना है तो लाल कलर है, तो लाल कलर की भी अलग अलग उसके शेड्स होती है, वैसे वो शेड हम अलग अलग कहेंगे। वैसे यहाँ क्या नापने, हमको कर्म की शक्ति नापनी है कि ज्ञान आवरण कितना आवरण डालता है, तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद नापेंगे। जहां आवरण ज्यादा है वहां जीव में ज्ञान की हीनता हो रही है। अभी हमारा यहाँ विषय कौन सा चल रहा है, योग का। योग में आत्म प्रदेशों की चंचलता, जहां चंचलता के कारण क्या होता है, कर्म का भी ग्रहण होता है और शरीर के परमाणुओं का भी ग्रहण होता है। जैसे मनोवर्गना का, भाषा वर्गना का, औदारिक शरीर के आहार वर्गना का, इस सब का ग्रहण हर समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि आत्म प्रदेशों का कंपन हो रहा है, चंचलता हो रही है। क्यों हो रही है? हमारे आपका हो रहा है, सिद्धों के क्यों नहीं हो रहा, बोलो। हाँ, कौन से नामकरण, नाम शरीर नाम कर्म का उदय। जैसे कर्म का ग्रहण क्यों हो रहा है, तो कारवां शरीर नाम कर्म के उदय से। और ये औदारिक शरीर के परमाणु क्यों ग्रहण हो रहे हैं, मनुष्य तीरंजों के औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण होते। और देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो वो वैक्रियक जाति के परमाणु को ग्रहण होते करते। सबको तेजस शरीर नाम कर्म का उदय है, संयोग केवली तक, तो तेजस शरीर के परमाणु भी ग्रहण होते हैं। इस तरह से ग्रहण होते हैं का कहना है ना, वो वारगणा है, वो विशिष्ट शरीर रूप से परिणमित होती है। तो उसमें कारण क्या है, तो जीव का योग, आत्म प्रदेशों की चंचलता। ये जो एक्चुअल चंचलता होना, आत्मा में असंख्यात प्रदेश है और वो प्रदेशों में चंचलता होते, कंपन होता है कर्म निमित्त, पुराने कर्मों का उदय, उसमें आत्मा के प्रदेशों की चंचलता होती है। उसको कहते हैं मन वचन काय के निमित्त से, कहने की पद्धति मन वचन काय के निमित्त से, यानी उन जाति के परमाणुओं का जो ग्रहण चल रहा है वो आता है ना मन वचन काय के निमित्त से, आत्म प्रदेशों की चंचलता। और उसमें से क्या होता है, योग ये कारण है और उसकी प्रवृत्ति है। जो हम निमित्त होता है पर वो कार्य नहीं करता, कार्य नहीं कर, आत्मा में कार्य अपने विभाव परिणाम से होता है, आत्मा स्वयं विभाव रूप परिणमित हो रहा है। हाँ 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 चल से चल से हाँ। आपका प्रश्न है कि मुझे तो सम्य दर्शन प्रकट करना है, जो आत्मा का गुण है और मुझे प्रकट करना है, तो निमित्त को मुख्यतः आपू के नहीं आपू। हाँ देखो, कर्म जो निमित्त होता है, पर वो तो हमारे लक्ष्य कर, क्योंकि हमको कर्म दिखता नहीं है, कर्म को कैसा लक्ष्य करेंगे हम, कैसे अनुभव में आता है न, कर्म का उदय है, वो कर्म का है कैसे समझाना आपने, क्योंकि हमने पढ़ा है कर्म के उदय से होता है, इसलिए हमको लगा कर्म तो दिखता नहीं है। वेरी गुड। हाँ हाँ देखो, वो तो बात सही है आपकी, आपको अपने को समझना है। हाँ आपके जो शास्त्र थे उसमें बहुत आपने पढ़ लिया, परंतु मूल बात कहाँ से होती है, देखो। हाँ, आपको शांति नहीं मिली क्योंकि आपको अंदर से कोई जिज्ञासा पड़ी है कि मैं अपने को समझूं। ये जिज्ञासा ही आपको सही रास्ता बना देगी। जैसे आपके हाथ में किसी ने पुस्तक दे दी, तो आपकी योग्यता से आपको कोई ना कोई निमित्त सहज मिलते हैं। हाँ, वो निमित्त मिले इसलिए कार्य होगा ऐसा नहीं, पर आपकी जो अंदर से पात्रता है उसी में वो आपको मिल जाएगा रास्ता। अभी पर निमित्त का लक्ष्य करो कि नहीं करो, लक्ष्य तो आपको निमित्त का नहीं, निमित्त होते हैं, पर यह सबसे पहला निमित्त कौन सा है? तो सर्वज्ञ भगवान का, सर्वज्ञ भगवान की वाणी होनी चाहिए। तो सर्वज्ञ का निर्णय पहले में पहले होना चाहिए कि सच्चे देव कैसे हैं, सच्चे मुनिराज कैसे होते हैं, सच्चा शास्त्र क्या है, इसका ये बहुत आवश्यक है। हाँ, कई बांधो नहीं। हाँ, आपको माइक चाहिए? हाँ, नहीं। हाँ, अच्छा, वो बज नहीं रहे। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, देखो देखो, आपका ये प्रश्न है कि मुझे सम्यक, यानी देव सच्चे हैं, गुरु सच्चे हैं, कब खबर पड़ेगी? जब आपको आत्मा का अनुभव होगा। पर उल्टा है, आत्मा का अनुभव होने के पहले निर्णय होना चाहिए कि हाँ, हमको जो मार्ग अपनाए, भले हम जन्मे अन्य संप्रदाय में, हम जैन नाम धारण करते हैं, परंतु सच्चे जैनत्व क्या होता है वो आज तक हम भूले हैं, भटके हैं, तो हमको नहीं समझ में आया। क्योंकि महावीर भगवान तो एक ही हुए हैं, मुनि पंथ तो एक ही होता है, ऐसे अलग अलग नहीं होता है। परंतु हम अभी इस पंथ में आए हैं, परंतु हमें सच्ची जागृति हुई है। जैसे आपने कांजी स्वामी का नाम सुना होगा, हाँ, उनका ही पढ़ते हैं। नहीं, वो ये बराबर नहीं है। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, आवाज सुनाई देगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, वो नहीं चाहिए और डिस्टर्बेंस हो जाए। मैं रिपीट करूंगी प्रश्न। हाँ, तो आप, हाँ, निमित्त की परिभाषा आपको मालूम है ना? हाँ, यानी हाजिरी आपने पुस्तकों में पढ़ी है। हाँ, यानी निमित्त नाम की चीज है, किसी द्रव्य की वो पर्याय है, किसी द्रव्य की पर्याय, वो उसके अपने कारण से हो रही है, उसके उपादान से उसकी उपस्थिति होती है, और ज्ञान का वो गेय है, वो जाके आपको मदद करेगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु निमित्त भी सही होना चाहिए, चाहे जिस निमित्त की उपस्थिति में समय दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, पण गोली लेवाथी थयुं एम नहीं। हाँ, हाँ, यही हम जो वही उसमें उदाहरण दिया, निमित्त जो होना है तो इतना तो थई रही छे। पण जैसे हमने ये निमित्त की बात की, वैसे भी अभी सच्चे देव गुरु शास्त्र के निमित्त पहले में पहले नक्की करना है कि सच्चे देव का पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञता ही होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो है ना। हाँ, हाँ, तो एक वितराग देव, तो वितरागता का स्वरूप क्या है? तो क्या हमने उनके ऊपर फूल चढ़ाए, चंदन लगाया, अंगी चढ़ाई, क्या ये वितरागता का स्वरूप है? तो नहीं। अस्त्र वस्त्र शस्त्र वाले तो भगवान हो ही नहीं सकते, ये वितरागता है। वो दूसरे, वो आपकी श्रद्धा में लेना चाहिए। हाँ, वो श्रद्धा, और आप जिसको मानते हैं, नमस्कार करते, वो भी वैसा ही चाहिए, वो भी कंडीशन है। क्योंकि मन में है और मगर बाहर में क्रिया कर रहे, तो मैं आचार्य हो गई। हाँ, नहीं, पर आप अपने लिए वो तो नक्की करना है पहले में कि मुनि मुनिपना होता, वो निर्ग्रंथ दशा ही होती है। हाँ, यही होती है। हाँ, अभी आप नहीं चेंज कर सकते, परंतु बिल्कुल पूरे के पूरे आपका विश्वास श्रद्धा में ऐसा ही होना चाहिए कि यही यही मार्ग है। अगर उसी को नहीं अगर फॉलो करेंगे तो आपको वितरागता यानी समय दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। ये कंडीशन है, ये एक दूसरे से इतने लगते हुए है। हाँ, ये पण ये ऐसा ही सुमेल होता है, केवल नग्नता से नहीं होता है, उनको भी वितरागता कभी होगी, वो सही सब निर्णय करेंगे तभी। पण चाहे जिस वेश में साधुपना नहीं आता, यानी वो साधुपना ही नहीं है, ये नक्की कर, भले वेश पहना है आपने, परंतु अप्रमत्ता भी नहीं, अभी उनको समय दर्शन भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, आप माइक पे लो, ये वाले ले लो, यानी इसमें तो रिकॉर्ड होगा ना। हाँ, थोड़े दबा के रखो। ना ना, आपने करवाना चाहिए, पर आपने निर्णय पाको होने, और निर्णय में तो जैसा वैसा परिवर्तन भी होना चाहिए आपको। परिवर्तन यानी क्या? वही तो कह रही मैं, आता है पर कहेंगे कैसा कि परिवर्तन होगा वैसा, अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो वैसा परिवर्तन भी बाहर में होता है।
मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ सुनो, आपने कहा कि वो मुनि है, बाहर में कपड़ा पहना है नहीं पहना है मुझको क्या लेना है देना है, लेकिन स्वभाव से तो वो शुद्ध ही है, ऐसा आपने बताया?
सम्यक दर्शन की
नहीं, मुझे ये कहना है कि वो स्वभाव से शुद्ध है ऐसा आपने बताया?
नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा।
तो क्या बताया आपने?
ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। हाँ देखो, ये औरा से सुंदरता से उसको भूल जाओ अभी। हाँ उसका कारण अभी बात, हाँ उसकी चर्चा करेंगे बाद में। अभी ये तो है कि साधु कैसे होना चाहिए, वो किसी व्यक्ति को देखकर मत बोलो, साधु कैसे होने चाहिए, निर्ग्रंथ ही होने चाहिए, क्योंकि जिनके अंतरंग में इतनी वितरागता है उनके बाहर में वस्त्र का धागा भी नहीं हो सकता, क्योंकि देह माटे जरूरत पड़े तो देह रूप अपने को माना है तभी देह माटे जरूरत की बात आती है, क्योंकि उसको साधु ने, क्योंकि सम्य दर्शन सम्य दृष्टि को हाँ कपड़ा है, अभी वो गृहस्थ दशा में है, पांचवें गुण स्थान वालों को भी गृहस्थी है वो, तो उसके बाह्य में अगर वो साधु अगर हम कहते हैं मुनिराज कहते हैं तो उनके वो देह के प्रति ममत्व भाव बिल्कुल नहीं है, देह रूप में हो ऐसी बात ही नहीं वहां पर। प्रत्याख्यानी कषाय किसको है? नहीं उनको संज्वलन है खाली, पांचवें गया, पांचवें में प्रत्याख्यान है, छठे में गया। हाँ ख्याल में, तो उनको तो अगर मुनि यानी कपड़े सहित अपने को मुनि मानते हैं, दूसरा कोई उनको मानता है, तो दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में ना, ये हमको मानने की बात पहले श्रद्धा में लेना है, क्योंकि आपकी इतनी तीव्र जिज्ञासा है कि इस भव में आपको तो हाँ बिल्कुल यही करना है आपको, और इसके लिए आप स्वयं आ गई यहाँ पर, तो इसके लिए मैं आपको खुलकर बता रही हूँ, नहीं तो कि आपको हाँ क्योंकि आपको आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं तो मेरी व्यवस्था कैसी होगी, खाने पीने का कैसे होगा, क्या अभी ऐसे बहुत सारे सबने ऐसा करके दिखाया है, आप ऐसे अकेली नहीं है, कांजी स्वामी ने स्वयं छोड़ा है, उनको तो विरोध था कितना कितना पुरुषार्थ, तो जिसको इतना अंदर से तीव्र रुचि है उसका पुरुषार्थ भी होगा होगा, वो तो करना है, ये कथन होता है, ये तो
वो तो सहज वो तो होता है,
होता है कथन में
कथन,
कहेंगे
कथन में तो ऐसा ही कहेंगे करेगा करके
ऐसा ही कहेंगे हम, क्यों पहले में पहले ये तो दुर्दा ही है, वो ख्याल में आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं, करने धरने की बात ही नहीं, वो तो देखो ज्ञान ही पूरा रास्ता कर देगा, ज्ञान में ये अभी हमारा प्रवचन सार चल रहा है शाम को, सुबह तो हमारे अलग विषय चलता है करना नहीं कब, शाम को हमारे ये विषय चलते हैं रोज के, तो उसमें तो यही बात आएगा आत्मा की अनुभूति, उसके लिए पहले में पहले छह द्रव्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें मेरा उसका संबंध क्या है, मेरा अपना स्वरूप क्या है, पूरा विस्तार से जाने बिना आगे नहीं गए, वहां पर भी सबसे शुरुआत केवल ज्ञान का स्वरूप वहां से शुरुआत की, तो हमारे पूरे चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक का स्वरूप यानी पूरे मोक्ष मार्ग का स्वरूप जब तक हमारे ख्याल में नहीं आता है तब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, इसलिए मुनि का
मैं बताना चाहता हूँ। देखो किसी व्यक्ति को यानी किसी जीव को सम्यक होता है तो उस समय चार बातें एट ए टाइम होती है, तो उसमें से चार बातें कौन सी? सच्चे देवगुरु शास्त्र का यथार्थ निर्णय कहो, यथार्थ श्रद्धान कहो, सात तत्वों का यथार्थ प्रतीति कहो, स्वपर भेद विज्ञान कहो, या आत्मानुभूति कहो, ये चारों ही बातें एट ए टाइम होती है। इसमें से एक भी बातों में कुछ गलत हो गया तो उसको सम्यक तो होने का चांस ही नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो कह रहे बिल्कुल करो, सबको जो जीव है वही सम्यक तो प्राप्त करेगा, पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य उनके तो चांस ही नहीं है। तो उसके लिए आप पहले में पहले ज्ञान में आना चाहिए कि सच्चा देव कौन है, सच्चा गुरु कौन है और सच्चा शास्त्र क्या है। ये तीनों बातों का पहले निर्णय हो जावे तो उसकी श्रद्धा भी अकॉर्डिंगली परिणमित होगी कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूं। अब यहां जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपना अपना परिणमन करने में सक्षम है। तो ये कह रहे थे इसके लिए कारण क्या हो सकता है, वो कारण भी हमें बताया गया है। वो अगर हमारे ज्ञान में श्रद्धा और ज्ञान का दोनों का परिणति एट अ टाइम हो रही है, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि भाई इसके कारण ये हो रहा है कि उसके कारण ये हो रहा है, दोनों एट अ टाइम हो रहे हैं। अभी हम कह सकते हैं ज्ञान उसको निमित्त है श्रद्धान में, लेकिन आप भी कह रही है और हम भी मान रहे हैं कि निमित्त जरूर होता है लेकिन निमित्त कार्य में कुछ नहीं कर सकता, ख्याल में है ना। इसलिए आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो निमित्त बहुतांशी अन्य द्रव्य में रहता है, तो एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, दोनों द्रव्यों का स्वचतुष्ट भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य की अस्थि अपने में परमे नास्ती है, पर द्रव्य की अस्थि अपने में है उसमें परमे नास्ती है, तो जिसमें नास्ती है वो द्रव्य का क्या कर सकता है। कथन में जरूर आएगा कि ये निमित्त है, हम जरूर, बहन ने अभी बताया आपको कि हम निमित्त को देख भी नहीं पाते क्योंकि वो जो कर्म रूप जो परिणति होती है पुद्गलों की वो इतनी सूक्ष्म होती है कि कोई इंद्रियों से हम जानते ही नहीं। फिर कर्म है ये कैसे जाना, तो जाना तो जिनेन्द्र परमात्मा ने जो दिव्य ध्वनि में बातें बताई और शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार हमने वो एक्सेप्ट किया है। आज तक मैं तो यही कहता हूं कि केवली भगवान ने भी अपने आंखों से कर्मों को नहीं देखा, क्यों,
ज्ञान से जाना
है, ख्याल में। और हम तो देखते हैं कि हम किसी को पूछते क्यों भाई आज स्वाध्याय में नहीं है, तो वो कहता है कि मेरे को अंतराय कर्म बीच में आया, तो उसको अंतराय कर्म बराबर दिखता है, बाकी कोई कर्म नहीं दिखता है, यानी ये सब बहानेबाजी है। तो हम यही कह रहे हैं कि निमित्त जो होता ही है लेकिन निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता, उसके लिए मैंने 3-4 कारण, ऐसे 16 कारण दे सकते अपन कि जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमें अगर सम्यक्त की प्राप्ति करनी है तो आपने बताया, वैसे हम भी आपको रिपीट कर रहे हैं, सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का यथार्थ निर्णय और श्रद्धा होना चाहिए। वो भले कैसे भी हमारे श्रद्धा में ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता,
इसीलिए ज्ञान सही होना चाहिए पहले, परंतु यही तो केवल
ज्ञान
नहीं, 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 वो क्यों सच्चे है वो आपको निर्णय, अंदर क्या
हम आपको वही समझा रहे हैं, हम देव के बारे में श्रद्धा करना जा रहा चाहते हैं तो देव का निर्णय होना चाहिए। तो એનો અર્થ એમ થયો કે આપણો યથાર્થ નિર્ણય
જ્ઞાન નથી,
આપણો જ્ઞાન યથાર્થ નથી, એટલા માટે હવે આ તો કેવું તો નહીં સારું લાગે, પણ દિગંબરના જે પ્રાથમિક શાસ્ત્રો છે એ પહેલા સમજવો પડશે, એટલા માટે જેને કહેવાય છે કે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય શું છે એ સમજો તો આગળ વાત વધે, કેમ કે
હા પુસ્તક
આપણા
ખાલી એક વાંચી નહીં, એક વાર સમજાશે નહીં, હા હા જેવી રીતે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ ને એવી રીતે
I want
એમાં આપણે તમારો વધારે વધી જશે ને જ્ઞાનમાં, તો તો એ પણ નીકળી જશે બાકી તમારો વ્યવહાર. यानी आपको तो ज्ञान में ही आगे, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग के मेरी पुस्तकें पढ़ रही है, उसके बाद ग्रंथों का मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, प्रवचन सार है, इनमें तो इतने विस्तार से बताया है, पर उसके लिए हाँ पर हाय वाचवा थी एमांथी मर्म नहीं समझाए. हाँ नहीं पण ये तो વાસંતીબેન હા એના માટે જ્ઞાન કી જરૂરી હૈ. હા કઠિન છે જરા ચેતી લે. હા 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 સારું છે. હા હા ના પણ વાત શું છે કે એ સમજાય છે, પણ એનો બેસ રૂટ્સ જે છે, હા એ રૂટ્સ, હા 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 આપ જે બધું સાંભળ્યું હતું તમે વાંચ્યું હતું એના બેસ આ છે, એ જયારે તમારું ક્લિયર થશે. હા હા બિલકુલ, બેસ થી તમારે ચાલુ કરવું પડશે. હા દ્રવ્ય હી ઉસકો કહેતે હૈ જો અનંત ગુણો કા સમૂહ હૈ ઓર હરેક કી હર સમય પર્યાય ચલતી હૈ, ઇસકો કહેંગે ગુણ પર્યાયવત દ્રવ્ય. હા સમજાને કે લિયે પહેલે બેસિક કિસી કો કુછ માલૂમ નહીં તો ક્યા કહેંગે ગુણો કે સમૂહ કો દ્રવ્ય કહેતે હૈ, વહાં સે શરૂઆત કરે. હા ફિર પર્યાય કિસકો કહેંગે, ગુણો કે પરિણમન કો પર્યાય કહેતે હૈ, એ તો બિલકુલ જૈસે કહેને બચ્ચે કો સિખાને કી બાત હૈ. અભી આગે બઢને કે બાદ ક્યા હૈ, ગુણ ભી હૈ ઓર પર્યાય ભી હૈ, ઓર પર્યાય કૈસી હૈ, દ્રવ્ય મેં અનાદિ અનંત પર્યાય ઉસકે અપને સે હોતી ઓર સુનિશ્ચિત હૈ. યે નિશ્ચિત ક્યો હૈ ઉસકે લિયે અભી વો કારણ કાર્ય રહસ્ય કે બહોત સારે ઉસમે સિદ્ધાંત બતાએ, વો સારે આપકો નક્કી કરને પડે. ઉસમે નિમિત્ત ઉપાદાન હૈ, પાંચ સમવા હૈ, ષટકારક હૈ, બહોત સારી શક્તિયા હૈ, યે બીજી બુક છે. પણ ઉસકે લિયે પહેલે મેં પહેલે જો પુસ્તક મેં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સામાન્ય ગુણ હૈ, વિશેષ ગુણ હૈ, સાત તત્વ હૈ, ઉસકો બિલકુલ જીસકો કહેતે સ્કૂલ મેં જૈસે હમ બારંબાર સ્ટડી કરતે થે વૈસે સ્ટડી કરે, અભી વૈસા કરીએ. હા ઉસમે સે ઓર આપકો મિનિંગ, ઓર વૈસે પઢને સે ભી સુનને કી જ્યાદા અચ્છા હોતા હૈ, સુનના ક્લેરિટી હોતી. અચ્છા હા તો શામ કો આપ, તમે શામ કો આવો, પણ 6:15 હોય છે એક્ઝેક્ટ. હા 6:15 થી 7:30 ઓર 7:30 થી 8:30 પણ બેન્ચરીના વચનામૃત ચાલે છે, કેમ કે કોઈને લઈને આવો એમાં. હવે તમે જો, ચાલો આપણે જરા આગળ વધીએ એમાં. તો હવે હમ થોડા યોગસ્થાન કે બાત કરી રહ્યા થે, तो उसमें योग की शक्ति नापने का जो यूनिट है, जो एकक है, स्मॉलेस्ट जिसको कहेंगे उसका पॉइंट, उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद। तो आत्मा में प्रदेश कितने हैं, तो लोक में जितने असंख्यात है उतने एक प्रत्येक आत्मा के प्रदेश है। तो प्रत्येक आत्म प्रदेश का अपना अपना कुछ योग है, हीनादिक। तो सबसे जघन्य योग वाले आत्म प्रदेशों को हम एक लाइन में बताएंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम वर्गणा कहेंगे। जिसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक है, ऐसी दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, एक एक से अधिक अधिक अधिक, ऐसे असंख्यात वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहेंगे। एक स्पर्धक के बाद थोड़ा अंतर देके दूसरा स्पर्धक होता है, तीसरा स्पर्धक होता है, चौथा होता है, ऐसे असंख्यात स्पर्धक होते हैं, तब जाके वहां पर एक योग स्थान होता है। इसको जघन्य योग स्थान हम किसको कहेंगे, तो मिनिमम योग से हमने शुरुआत की, तो जितने कितने होते हैं, तो एक वर्गणा में वर्ग यानी कितने संख्या, हमने कल जगत प्रतर का असंख्यात भाग कहा नहीं, वो असंख्यात जगत प्रतर होता है, असंख्यात जगत प्रतर। देखो मैंने देखा था ना कल, मैंने क्या बताया था, उसमें से मुझे चौक देना, उसमें है क्या वो सब पीले उसमें, हाँ हमको एक योग आत्मा में पूरे प्रदेश, ये इसको लोक कहते हैं, ये उसकी संदृष्टि है, तीन आड़े लेकर लोक। अभी इन इतने ही प्रदेश है, उनमें हमको योग स्थान बनाना है। हाँ, तो इसमें वर्ग का अर्थ क्या होता है, एक आत्म प्रदेश, ये दूसरा आत्म प्रदेश, तीसरा, ये सभी कैसे आत्म प्रदेश है, जिनमें इक्वल, हाँ समान योग है, परंतु मिनिमम है। जघन्य में जघन्य योग जिसमें है उनको हम एक लाइन में रखेंगे, वो कितने होते हैं, तो असंख्यात जगत प्रतर, ये असंख्यात की साइन है और ये जगत प्रतर की साइन है। क्योंकि अभी दूसरे में कितने हैं, वो फिर है थोड़े कम है, पर इस तरह से इसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, इसमें और एक ज्यादा है, उसमें एक और एक ज्यादा है, तो ये भी असंख्यात होते हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, इतने वर्गणा होती है। फिर यहाँ जितना शुरुआत किया तो मान लेते ना, यहाँ 100 है और 101 2 3 4 तक हम ले लिया, और फिर 200 से लेकर दूसरा स्पर्धक चालू हो जाता है, उसमें भी ऐसे, फिर तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक, ऐसे असंख्यात स्पर्धक होते हैं। तो ये जघन्य योग स्थान हुआ। अब योग स्थान करते किसी जीव को मिनिमम इतना योग है, नहीं असंख्यात जगत प्रतर एक वर्गणा में होते हैं। जगन देखो, एक एक स्पर्धक में असंख्यात वर्गणा, और ऐसे स्पर्धक भी असंख्यात, सबका नंबर कथन जगत प्रतर के असंख्यात, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, असंख्यात विभाग, और एक एक स्पर्धक में वर्गणा भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग वर्ग, हाँ असंख्या जगत प्रतर, क्योंकि पूरे लोक है ना, ये लोक है, ये पूरा लोक है, कितना है 343 घन राजु है ना, मैंने 7 राजु का घन है ना वो, और उसको हम भाग देंगे किससे, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग से। दूसरी भाषा में ये 7 राजु गुणा 7 राजु गुणा 7 राजु, मैंने 7 × 7 × 7 ये राजू है, ये आर है सब, उसको डिवाइड करना किससे, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, जगत श्रेणी 7 का असंख्यात भाग, उल्टा यानी उल्टा करके गुणा करें, तो 7 राजू यहाँ लिखेंगे और यहाँ इंटू असंख्यात करेंगे, 1 7 राजू जग गया, तो जगत प्रतर असंख्यात गुणा हो जाएगा। तो एक एक वर्गणा में प्रदेश कितने, जीव के प्रदेश कितने, तो असंख्यात जगत प्रतर, ऐसी वर्गणा कितने हैं, श्रेणी का असंख्यात भाग, ऐसे स्पर्धक कितने हैं, श्रेणी का असंख्य, ये पूरा मिलकर एक योग स्थान हुआ। आप निकालो कर्मकांड, नहीं नहीं आप सब भूल जाओ, कुछ बात नहीं है, कर्मकांड की बात निकालो, देते हैं। पेज नंबर ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, परंतु हम इतने विस्तार से नहीं जाएंगे, पेज नंबर 228 निकालना। पेज नंबर 228। नहीं, मैंने जगत पत्र का असंख्या तो भाग कहा था, परंतु ये तो असंख्या जगत पत्र हो गया। अभी इसमें से मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताने, 228 पर नीचे का भावार्थ है ना। देखो भावार्थ से प्रत्यय, नीचे का भावार्थ दो बार भावार्थ लिखा है, नीचे का है। एक एक खंड अविभाग प्रतिच्छेद के प्रमाण के समान करने पर जिस प्रदेश में जघन्य शक्ति कही थी, उस प्रदेश के जघन्य शक्ति के असंख्यात लोक प्रमाण खंड होते। अपनी भाषा में समझेंगे कि जीव के एक प्रदेश में योग के अविभाग प्रतिच्छेद कितने होते हैं, असंख्यात लोक। यहां तो इतना ही समझा इसमें। एक 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 जीव प्रदेश में मिनिमम भी योग कितना होता है तो असंख्यात लोक, ये उसका यूनिट है। असंख्यात का एक पर्टिकुलर यूनिट बताए, क्योंकि कितनी शक्ति है तो असंख्यात प्रमाण शक्ति है, तो असंख्यात का प्रमाण कितना है तो असंख्यात बार लोक को गिनेंगे इतना। असंख्यात लोक जघन्य शक्ति है, जिसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। यानी जीव के एक प्रदेश में अविभाग प्रतिच्छेद कितने मिनिमम भी तो असंख्यात लोक। तो कहते इसलिए तीसरी लाइन, असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह जघन्य शक्ति है, उसको वर्ग कहते हैं। अभी वर्ग किसको कहा यहाँ? जीव के एक प्रदेश को एक वर्ग कहा, इसी कारण एक वर्ग में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद कहे है। उस वर्ग की सहनानी व अक्षर, यानी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, व
सहनानी
यानी चिन्ह, उसको व कह दिया। उसके आगे जिन जिन प्रदेशों में जघन्य शक्ति प्रमाण शक्ति पाई जाती है, ऐसे जितने प्रदेश है उतने लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखेंगे जघन्य शक्ति कितनी, असंख्यात लोग, तो हर एक प्रदेश में असंख्यात लोग असंख्यात, तो सारे प्रदेशों को हमने एक लाइन में लिखा। जिसमें मिनिमम पॉसिबल शक्ति है योगों की, ऐसे सभी जीव प्रदेशों को हमने एक लाइन में रखा। एक लाइन में होते नहीं है, समझने के लिए हम ग्राफ कह रहे उसका। यहां तक समझे ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, वर्गणा कहेंगे। तो एक ये जघन्य वर्गणा कह ली, पहली वर्गणा। पहली वर्गणा में तो उसमें प्रदेश कितने हैं तो वो बता रहे हैं। ऐसे जघन्य शक्ति प्रमाण शक्ति के धारक जीव के प्रदेश असंख्यात जगत प्रमाण है, जगत प्रतर प्रमाण है। जगत प्रतर किसको कहेंगे? देखो जगत श्रेणी यानी सात राज्य, जगत प्रतर ने राजू स्क्वायर करना है, सात राजू का स्क्वायर। सात का स्क्वायर होता है 49, राजू का स्क्वायर होता है राजू वर्ग, तो 49 राजू का वर्ग उसको कहेंगे जगत प्रतर। और 49 राजू वर्ग मल्टीप्लाइड बाय सात राजू, 343 घन राजू, जो पूरे लोकाकाश के एरिया जो है उसको कहेंगे एक लोक, है ना। तो ये कितने हैं ऐसे जघन्य शक्ति के ऐसे प्रदेश कितने हैं तो असंख्यात जगत प्रतर। यहाँ समझ में ही ना, और वही मैंने आपको यहाँ समझाया, ये लोक प्रमाण प्रदेश है, उसको श्रेणी के असंख्यात पे भाग प्रमाण जो वर्गणाएं वगैरह है उसका भाग दिया, तो उसका उत्तर की कितना आया तो असंख्यात जगत प्रतर। नीचे के पैराग्राफ में यही समझाया, उसको छोड़ देते हैं। अब 229 पेज पर आना। उस जघन्य शक्ति रूप वर्ग में जितने अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह कहा, असंख्यात लोग कहा था, उससे एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाए जाते हैं, ऐसी शक्ति के धारक जितने प्रदेश हो उतने प्रदेश उसके ऊपर लिखना। यह हमने यहाँ लिखा, पहली लाइन लिखी है वो जघन्य वर्गणा थी, उसमें ऊपर की वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद जाता है, ये सब हमने यहाँ लिखे थे प्रदेश। ये दूसरी लाइन है, उसमें क्या विशेषता है, एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, इसमें कितना था, असंख्यात लोक, एक एक प्रदेश में अविभाग प्रतिच्छेद, इसमें कितना होगा, असंख्यात लोक प्लस वन। जैसे हमने समझाने के लिए इसमें 100 माना, इसमें 101 माना, इसके ऊपर 102 वाले प्रदेश हो गए, 103 वाले हो गए, इस तरह से
उनकी संख्या कम रहती है,
संख्या कम होती चली जाती,
प्रदेशों की संख्या कम रहेगी।
हाँ,
और
अविभाग प्रतिशत एक से बढ़ेगा,
बढ़ेगा।
वे प्रदेश प्रथम वर्गणा में जितने प्रदेश कहे थे उनसे एक विशेष से ही जाना, कुछ कम, उसको कहिए विशेष, उसी का दूसरा नाम है चय। इस तरह प्रथम वर्गणा में प्रदेशों का जो प्रमाण है उसको दो गुणाने का, वो कैसे आता है वो छोड़ दो। अब ये सब यहाँ विशिष्ट कथन है तो उसको हम अपनी भाषा में समझेंगे। तो ऐसी एक वर्गणा वगैरह कम होते चले जाए ना, प्रदेश कम हो रहे, तो यहाँ दूसरा स्पर्धक शुरू, ये दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, परंतु प्रति वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद कम हो रहा है, यहाँ तो अंतर है बीच में, परंतु प्रदेशों की संख्या कम हो रही है, कुछ कम कुछ कम कुछ कम, जहां आधी हो जाएगी। यानी यहाँ असंख्या जगत प्रतर थे ना, उससे आधे हो जावेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, गुणहानि। गुणहानि का होता है द्विगुणहानि, दो गुणहानि यानी आधे हो गए, तो एक बार आधे हो गए, फिर दूसरी बार आधे हो गए, तीसरी बार आधे हुए, इसको कहेंगे गुणहानिया कहेंगे। ये गुणहानि का नाम नहीं लेते हुए भी हम योग स्थान को समझना है तो कहते ऐसी कितनी असंख्यात वर्गणा चली गई ना, तो एक गुणहानि में भी अनेक स्पर्धक गए और एक एक स्पर्धक में असंख्यात वर्गणा गई, सबको मिलकर क्या कहेंगे हम, एक गुणहानि। ऐसे दूसरी तीसरी चौथी, इस तरह से, यानी पूरा ये जघन्य योग स्थान जो है वो ऐसा ही है। क्या क्या देखा इसमें हमने, अविभाग प्रतिच्छेद से युक्त प्रदेशों को हमने अविभाग वर्ग कहा, वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक, ये पहला स्पर्धक, ये दूसरा स्पर्धक, ये तीसरा स्पर्धक, ऐसे स्पर्धक भी असंख्यात होते हैं, और ये सब मिलकर जघन्य योग स्थान हुआ। ना, अविभाग प्रतिच्छेद कैसे दुगुना होगा, प्रदेशों की संख्या कुछ कम कुछ कम कुछ कम हुआ, अरे ये अंतर यहाँ है, दुगुना हो गया उधर जाके नहीं, प्रदेशों की संख्या तो असंख्यात स्पर्धक जाने के बाद आधी हुई है, और अविभाग प्रतिच्छेद यहाँ कितना था, यहाँ 100 था तो यहाँ 200 हो गया था, दूसरी स्पर्धक की पहली वर्गणा में ही दो गुना हुआ था, तीसरी स्पर्धक की पहली वर्गणा में तीन गुना हुआ था,
300
असंख्यात स्पर्धक जाने के बाद हुए थे। अब ये गुणहानि का नाम नहीं भी लेंगे तो हमको सामान्य से क्या समझना है, हाँ, असंख्यात स्पर्धकों की ये क्या हुआ, जघन्य योग स्थान हुआ। किसी जीव को कम से कम योग इतना होगा, ये कौन से जीव को होगा बोलो अभी, हाँ, कल हमने वो 84 स्थान देखे थे, तो सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त जो निगोदिया है उसका उपपाद योग यानी जन्म का पहला समय, वहां उसका योग मिनिमम है। यहां तक समझ में आई बात, अभी उसको जघन्य योग स्थान कहा। अभी ये बीच वाली बातें सब छोड़कर हम आगे बढ़ा, पेज नंबर 233 निकालना। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, आउली का असंख्यात विभाग कहाँ आपको याद है, पल्ले के असंख्यात विभाग गुना था, योग कितने गुना था, योग कितने गुना की बात थी, वो पल्ले के असंख्यात विभाग गुना था, उसमें आउली का असंख्यात विभाग नहीं था। अवली का असंख्यातवा भाग प्रदेशों के बंटवारे में मैंने बताया था। ये योग स्थान समझ में है ना, जघन्य योग स्थान किसको कहेंगे? असंख्यात लोक जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। आप घोटाला करें, असंख्यात लोग किसका एक एक में अविभाग प्रतिच्छेद था और एक एक स्पर्धक में वर्गणा जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग और एक योग स्थान में पूरे स्पर्धक भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग, उससे अधिक कभी नहीं होगा। ये पूरा मिलकर जघन्य योग स्थान हुआ असंख्यात विभाग प्रमाण। आपको ये पूरा लिखना है ना, 232 पेज निकालो कर्मकांड की नीचे का पैराग्राफ 232। जी हाँ, रेफरेंस पेज लिख के रखना पड़ेगा। पहले हमने कौन सा 228 से बताया था ना, अभी 232 बता रही हूँ मैं, नीचे का पैराग्राफ लास्ट एकदम। अभी यहाँ पहले लाइन छोड़ो, उसमें शॉर्ट में बताया जीव के सर्व प्रदेश लोक प्रमाण मिला आपको। नाना गुणान यानी ऐसी आधा आधा कितने बार नाना गुणान ये कितनी होगी, तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। एक गुणानी का आयाम जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण आगे लिखा है। आपके पास पुस्तक नहीं है? अच्छा, इनमें यथा योग्य कथन जान लेना। जगत श्रेणी का असंख्यात विभाग यानी एक गुणहानि का आयाम का अर्थ होता है एक गुणहानि में वर्गणा कितनी है या स्पर्धक कितने हैं, दोनों का ही कथन वह इतना ही होता है। अब यहां आना अपन 233 पर आना, पेज नंबर 233 पर। यहाँ जो बीच में वो 229 नंबर लिखा है ना 230 गाथा के ऊपर, इस तरह जगन्य योग स्थान का कथन जानना, हमने शॉर्ट में जान लिया, उसके बहुत विस्तार है। अब कहते हैं उसके 230 गाथा की टीका को पढ़ेंगे। सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त जीव के पूर्वोक्त सबसे जघन्य उपपाद योग स्थान पाया जाता है। सब जीवों में 14 जीव समासों में सबसे जघन्य योग किसको है? सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त जीव के, वो भी कब? उपपाद यानी जन्म का पहला समय, उसके अनंतर स्थान से लेकर। अनंतर स्थान का अर्थ क्या है? किसी नेक्स्ट समय से नहीं,
नेक्स्ट स्थान,
किसी अन्य जीव को समय नहीं लेना। यहाँ पर देखो, देखो ये योग स्थान किसी जीव को ये मिनिमम है, किसी अन्य जीव को थोड़ा अधिक योग है, किसी अन्य जीव को थोड़ा अधिक है। ये सूक्ष्म निगोद से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक के जितने योग स्थान है वो सब हम एक लाइन में लिखेंगे। इसको कहेंगे योग स्थान। अलग अलग जीवों को अलग अलग समयों में ये कोई भी पॉसिबिलिटीज है इतने योग स्थानों की, तो कहते हैं तो उससे अनंतर स्थान से लेकर सर्वोत्कृष्ट योग स्थान तक सांतर निरंतर और सांतर निरंतर सभी योग स्थानों में एक एक योग स्थान पति निरंतर सुचंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक युगपद बढ़ते हैं। इसके क्या कहते हैं? इस स्थान में जो स्पर्धक थे उससे इसमें स्पर्धक कितने बढ़े, तो सुचंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण वो भी जघन्य स्पर्धक बढ़ते थे। कितनी बढ़ी? हाँ देखिए, यहाँ वही लिखा है लास्ट लाइन में टीका, पहले पैराग्राफ का लास्ट, प्रथम जघन्य स्थान से सुचंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक दूसरे स्थान में अधिक है। यानी जघन्य स्पर्धक का अर्थ क्या था? ये हमने वर्ग वर्गना ये पूरा मिलकर जघन्य स्पर्धक था, तो इस जघन्य स्पर्धक में जितने अविभाग प्रतिच्छेद थे दोनों की, जघन्य स्थान यानी ये पूरा अब दूसरा इसके बाजू में हम देखें, दूसरा एक योग स्थान कहेंगे, उसमें योग थोड़ा ज्यादा है। तो थोड़ा ज्यादा यानी कितना ज्यादा है? तो ये जो जघन्य स्पर्धक के जो अविभाग प्रतिच्छेद से उसके सुचंगुल के असंख्यात भाग, वो उसके भाग प्रमाण, यानी उसको सुचंगुल के असंख्यात भाग से भाग दो तो जितना योग आएगा उतना उसमें अधिक है। प्रथम जघन्य स्थान से सुचंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक दूसरे स्थान में अधिक है। जघन्य स्पर्धक यानी जघन्य स्पर्धक के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उसको सुचंगुल के असंख्यात भाग से भाग दो उतना योग दूसरे स्थान में ज्यादा है, या उतने स्पर्धक और ज्यादा हो गए, ऐसा भी कहेंगे? इतने जघन्य स्पर्धक उसमें अधिक बढ़े। इसी का भावार्थ है, देखो भावार्थ पढ़ो नीचे। जघन्य योग स्थान में प्रथम गुणहानि के प्रथम स्पर्धक में जितने अविभाग प्रतिच्छेद है, वही तो मैं कह रही थी। वो प्रतिच्छेद कैसे नापेंगे? एक वर्ग में असंख्यात लोक, एक वर्गणा में कितने, दूसरे वर्गणा तीसरे सभी वर्गणाओं के मिलकर अविभाग प्रतिच्छेद कितना, उसको जघन्य स्पर्धक का अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। तो प्रथम स्पर्धक में जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उनसे सुचंगुल के असंख्यात वे भाग गुणा, ओहो मैंने भाग दिया था, भाग गुणा करना, यानी वो स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद मल्टीप्लाइड बाय अंगुल का असंख्यात भाग अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेदों से ऊपर के दूसरे योग स्थान में अधिक है। ऐसा नहीं है इसका, एक योग स्थान पूरा अविभाग प्रतिच्छेद लेंगे कि नहीं? ये पहले स्थान के जितने पूरे अविभाग प्रतिच्छेद है टोटल, उसमें वर्ग वर्गना स्पर्धक सब आ गए। अभी दूसरा जो है स्थान है तो उसमें कितना है? थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो पहले स्पर्धक का जितना है, एक ही स्पर्धक का, जघन्य स्पर्धक का जितना था उसको सुचंगुल के असंख्यात भाग गुणा करना, भाग नहीं देना, गुणा करना, उतने इसमें ज्यादा है। जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेदों को लेना, जघन्य स्पर्धक हर जगह होगा, उसमें परमाणु की संख्या कम होगी। फिर से
एक स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, इससे श्रेणी का संख्या में भाग प्रमाण,
उसमें स्पर्धक भी ज्यादा हो गए।
नहीं बराबर है, तो वहाँ पे जो हम लोग जो स्थान लेते हैं वहाँ पे टोटल मिले जुले योग स्थान में
टोटल
सर्वों का देते हैं उसका टोटल अभिभाग प्रतिशत कितना होता है?
हाँ हो ना, पूरी की टोटल है और दूसरे की पूरी टोटल कितनी ज्यादा है? इसको पूरे को नहीं गुणा करना है, अकेले जघन्य स्पर्धक के जो अविभाग प्रतिच्छेद उसको गुणा करना। पर पहले जघन्य स्पर्धक का कितना था? जघन्य योग स्थान का जो जघन्य स्पर्धक था वो स्पर्धक के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको सुचंगुल के असंख्यात विभाग गुणा करना, उसके टोटल में ज्यादा है। वो खाली एक वर्गणा के एक वर्ग का है। देखो एक जैसे हम 100-100 वाले, एक 100-100 योग वाले, यहाँ कितने प्रदेश है मान लेते हैं ना कि 100-100 योग वाले 1000 हो गए, तो कितने हो गए? 100,000 हो जाएंगे। ऊपर कुछ कम है उसका 101 मल्टीप्लाइड बाय 1000 नहीं 900 लेना, 102 मल्टीप्लाइड बाय 800 जो कुछ लेना है, तो ये सबका मिलकर जो होगा उसको काउंट करना पड़ेगा। किसको? ये टोटल को। अभी ये कितना है? टोटल को। जगन पूरे स्पर्धक का विभाग प्रतिच्छेद काउंट करना है, उसको काउंट करें, गुणा करेंगे तो ये टोटल पूरे स्थान के अविभाग प्रतिच्छेदों से उतना ज्यादा होगा। हम खाली एक स्पर्धक के हमने माने गिने हैं, ऐसे हर एक स्पर्धक के कितने असंख्यात स्पर्धक है, वो मिलकर एक स्थान होता है। तो टोटल स्थान का जो अगर योग गिनना है तो उसकी सबकी टोटल करनी पड़ेगी। हाँ, या ऐसा भी कहेंगे ना, यो अंतिम जो योग, जैसे हमने कर्मों में अंतिम स्थिति गिनते, अंतिम अविभाग गिनते हैं, तो अंतिम का अगर गिनेंगे तो उसमें कितने ज्यादा हो जाएंगे, तो पहले स्पर्धक से सुचंगुल के असंख्यात पे भाग गुना उसमें बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम की कंपेयर करेंगे तो देखो भावार्थ पढ़ते, फिर जघन्य योग स्थान पेज नंबर 233 के बाद चले। जघन्य योग स्थान में प्रथम गुणहानि के प्रथम स्पर्धक में जितने अविभाग प्रतिच्छेद है, ये जो सबसे पहला स्पर्धक, उनसे सुचंगुल के असंख्यातवे भाग गुणा अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेदों से ऊपर के दूसरे योग स्थान में अधिक है। दो योग स्थान में डिफरेंस कितना है? खाली सुचंगुल का असंख्यात, जघन्य स्पर्धक को सुचंगुल के असंख्यात पे भाग गुणा करना, इतना डिफरेंस दो योग स्थान में है, ये उसका अर्थ होता है। जघन्य स्पर्धक का जितना अविभाग प्रतिच्छेद है टोटल, उसको सुचंगुल के असंख्यात पे भाग से गुणा करो, इतना डिफरेंस दो योग स्थानों में है। ख्याल में है ना भाई? इसी प्रकार दूसरे और तीसरे में भी इतने ही जघन्य स्पर्धक बढ़ते हैं, इसी तरह से इतने इतने जघन्य स्पर्धक उसमें बढ़ते हैं। अभी वो अंतर वगैरह की बात हमने कल पढ़ी थी, अभी अपनी पुस्तक में आना। अभी छठी पुस्तक है ना, अभी आपके पास नहीं होगी, आपको केवल सुनना पड़ेगा। हम आए थे, हमने ये सारी वर्गणा प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा, स्थान प्ररूपणा हम देख रहे थे। पेज नंबर थे हम 7 नंबर के पृष्ठ पर। ये स्थान प्ररूपणा से पढ़ते हैं। अभी हमने जो स्थान की बात ना, योग स्थान की बात पढ़ी थी, वही बात यहाँ पर है। देखो, स्थान प्ररूपणा की अपेक्षा, ये योग स्थान की बात है, असंख्यात स्पर्धक जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं, मिलकर जघन्य योग स्थान होता है। यहां तक समझ में आई बात? जो अभी हमने इतना सारा पढ़ा है उसका ये अर्थ है। इस प्रकार असंख्यात योग स्थान होते हैं। असंख्यात योग स्थान कैसे लिए? कि हमने देखा सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त के उपपाद योग है, उसके एकांत वृद्धि है, उसके परिणाम योग है, और कहां तक? 14 जीव समास के सभी देखे हमने, 84 स्थान देखे थे, वो सब मिलकर भी कितने हैं? हाँ, यही थे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। विशेषत पहले हम जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धकों का निर्देश कर आए हैं। वे सब स्पर्धक मिलकर एक जघन्य योग स्थान होता है। यह सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त एक जीव संबंधी योग स्थान है। इसी प्रकार अन्य अन्य जीवों के सब प्रदेशों में रहने वाली योग शक्ति के आश्रय से अन्य अन्य योग स्थान की उत्पत्ति होती है। हमने देखा था सबको गिनती हम जघन्य से ही शुरुआत करेंगे, पर उसमें अधिक अधिक योग वाले अन्य अन्य प्रदेश होंगे ना। इस हिसाब से सब योग स्थानों की परिगणना करने पर, यानी नंबर ऑफ योग स्थान कितने होंगे टोटल, वे जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि जबकि एक एक जीव के आश्रय से एक एक योग स्थान बनता है और जीव अनंत अनंत है, ऐसी अवस्था में अनंत अनंत योग स्थान होने चाहिए, न कि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण। समाधान यह है कि जीव अनंतानंत होकर भी योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही होते हैं, क्योंकि एक जीव के जो योग स्थान होता है वह अन्य बहुत से जीवों को वही योग स्थान संभव है। हमने देखा ना एक एक योग स्थान में भी कितने कितने जीव पाए जाएंगे। कल हमने अनुभाग की बात की थी ना, वो तो स्थावर जीवों की अपेक्षा कल बात आई थी ना, अनंत अनंत होते हैं, कहां पर यही पर बात बताई थी? नहीं, अनंत जीवों की बात किस में? जीव समुदाहर में कल अनुभाग के प्रकरण में देखे थे। यहाँ तो जो यहाँ जो स्थावर के योग्य योग स्थान है उसमें तो अनंत अनंत जीव होगी ना वहां पर। हाँ, आगे बढ़ते देखो। उदाहरण स्वरूप साधारण वनस्पति को लीजिए। साधारण वनस्पति का दूसरा नाम क्या है? निगोद। साधारण वनस्पति के एक एक शरीर में अनंतानंत निगोद जीव रहते हैं, जिनके आहार और श्वासोश्वास आदि समान होते हैं। आहार का अर्थ क्या है? शरीर के परमाणु को जो ग्रहण करता है ना, वो नौकर्म आहार। वे एक साथ मरते हैं और एक साथ उत्पन्न होते हैं, अतः इन जीवों के समान योग स्थान के होने में कोई बाधा नहीं आती। सभी जीवों के नहीं, वो एक शरीर में रहने वाले, एक साथ उत्पन्न होने वाले में। हाँ, तो उनका योग वैसा होगा क्योंकि वैसा समान ग्रहण समान चल रहा है ना उनका। कर्म का समान नहीं है, कर्म जुदे जुदे जाति के होंगे उनके, अपने अपने कर्म जुदे जुदे होंगे, पर उनकी संख्या में वैसा ही होगा। इसी प्रकार अन्य जीवों के भी समान योग स्थानों का प्राप्त होना संभव है। अतः जीव राशि के अनंतानंत होने पर भी योग स्थान सब मिलाकर जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही होते हैं, यह सिद्ध होता है। अब आगे, इन योग स्थानों में समान स्पर्धक न होकर उत्तरोत्तर अधिक स्पर्धक होते यह बतलाते हैं। अभी ये बताइए ना, हमने देखा ना पहले योग स्थान में कितने योग, एक योग स्थान में हमने कितने स्पर्धक देखे थे? तो असंख्यात। तो दूसरे योग स्थान में अधिक हो गए ना, स्पर्धक बढ़ते चले जाएंगे, यही कह रहे हैं। अब उसी को कहेंगे एक एक योग स्थान में कितने कितने बढ़ते हैं। तो प्रति योग स्थान की बात करेंगे तो उसको कहेंगे अनंतर उपनिधा, और थोड़े थोड़े अधिक अधिक करते करते एकदम बढ़ जाएंगे तो कहेंगे परंपरा उपनिधा योग स्थानों की। हाँ, वो बताएंगे ना अभी। हाँ देखो, अनंतर उपनिधा की अपेक्षा ये छठे नंबर का, ये जो योग का अनुयोग द्वार छठे नंबर का है। अनंतर उपनिधा की अपेक्षा जघन्य योग स्थान में स्पर्धक सबसे थोड़े होते, सबसे थोड़े फिर भी श्रेणी के असंख्यात विभाग बताए थे। इनसे दूसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं, इनसे तीसरे योग स्थान में स्पर्धक विशेष अधिक होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक, उत्कृष्ट योग स्थान यानी संगी पंचेंद्रीय जीव का जो परिणाम योग स्थान में जो मैक्सिमम वाला है उसको लेना, वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। यहाँ विशेष का प्रमाण अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्पर्धक है। यही बात यहाँ बताई, कितने स्पर्धक अधिक है? अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्पर्धक अधिक हो जाते हैं, यानी उनके टोटल नंबर ऑफ स्पर्धक लिए। उन्होंने जघन्य स्पर्धक बात की थी, परंतु अभी कैसे लेना? अभी ये पहला स्थान है योग स्थान, उसमें स्पर्धक कितने थे? श्रेणी के असंख्यात वे भाग। दूसरे में स्पर्धक कितने हैं? प्लस नहीं, अधिक स्पर्धक। हाँ, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक होते हैं, स्पर्धक अधिक होते हैं। उसके जगन्य ये टोटल अविभाग प्रतिच्छेदों की बात की थी वहां, और यहाँ स्पर्धक कितने अधिक है उसकी बात की। समझ में ना, यानी टोटल अविभाग प्रतिच्छेद कितना बढ़ा, तो जगन्य स्पर्धक को सूचंगुल के असंख्यात विभाग गुणा किया उतने बढ़ा। अभी दूसरी भाषा में बोलते, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्पर्धक मान लेते ना दस थे, दूसरी सिंपल बात करती हूँ मैं, और यहाँ टोटल कितने हैं? बारह है। अभी देखो अभी यहाँ हमने जब देखा था, ये पहली स्पर्धक के पहली वर्गणा का यहाँ हमने 100 माना था, दूसरे स्पर्धक में 200, तीसरे स्पर्धक में 300, दस स्पर्धक में कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएगा, तो यहाँ का 1000 होगा। और दूसरे योग स्थान में कितने हो गए? जघन्य स्पर्धक के उतने ज्यादा हो जाएंगे ना, कितने हो गए? यहाँ डिफरेंस कितना है स्पर्धकों का? 2 का, तो वहाँ 1200, ये 1000 हुए ना, 10 को 100 गुना किया, ये 12 को 100 गुना करेंगे, 1200 हो जाएंगे। यानी उसमें डिफरेंस कितना हुआ, 200 का, 200 का डिफरेंस यानी ये दो हो गए ना, तो उस पर देखो मैंने बताया ना हायर जो ऊपर का है उसमें उतने, क्योंकि हम एक वर्ग का अविभाग प्रतिच्छेदों को भी सामान्य से गिन सकते हैं, तो यहाँ तो टोटल स्पर्धक का अविभाग प्रतिच्छेद निकाला उन्होंने, हम एक वर्ग का अविभाग प्रतिच्छेद भी वहां इतने गुना हो जाता है, तो यहाँ पर वही 1200 गुना हो जाएगा ना वहां का, वो तो हमने एक वर्गना का एक वर्ग की बात की, पर टोटल में भी उतना ही गुना हो जाता है, यानी स्पर्धक कितने बढ़े, तो हमने कह दो गुण, दो बढ़े फिर दो बढ़े फिर दो बढ़े इस तरह से, तो उसका जो टॉप मोस्ट अविभाग प्रतिच्छेद है वो भी बढ़ने वाला है उतना ही। अब यह है 10 मिनट, देखो विशेष का प्रमाण अंगुल के असंख्यात्व भाग, जिसको सूच्यंगुल भी कहते हैं उसी को अंगुल कहा, इतने स्पर्धक ज्यादा है, विशेषत एक योग स्थान में कुल स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण होते हैं, यह हम पहले बताए हैं, यानी वो सबसे जगन्य स्थान में भी इतने होते हैं, कहीं पर भी कहेंगे तो उसका प्रमाण कितना कहेंगे, श्रेणी के असंख्यात्व भाग, पर वो हीनादिक होते हैं। इस हिसाब से सब योग स्थानों में वे उतने उतने ही होते होंगे यह शंका होती है, अतएव इस शंका का परिहार करने के लिए यह अनंत रूप निधा अनुयोग द्वार आया है, इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त के भव में प्रथम समय में होने वाले जघन्य योग स्थान में जितने स्पर्धक होते हैं उनसे द्वितीय योग स्थान में, द्वितीय योग स्थान किसी अन्य निगोद को होगा, थोड़ा अधिक योग है तो उसमें योग स्थान, एक मिनट, उनसे द्वितीय योग स्थान में वे अंगुल के असंख्यात्वे भाग अधिक होते हैं, आगे इसी क्रम से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के प्राप्त होने वाले योग स्थान तक वे उत्तरोत्तर अधिक अधिक होते जाते हैं। अब यहाँ यह देखना है कि वे उत्तरोत्तर अधिक अधिक कैसे हो जाते हैं, बात यह है कि जघन्य योग स्थान के प्रत्येक स्पर्धक की प्रत्येक वर्गणा में जितने जीव प्रदेश होते हैं उनसे द्वितीयादि योग स्थानों के प्रत्येक स्पर्धक की प्रत्येक वर्गणा में वे उत्तरोत्तर हीन हीन होते हैं। क्या कहना चाहते हैं, जीव के प्रदेश तो उतने के उतने रहने वाले हैं, तो पहली जो हमने जघन्य योग स्थान की रचना की थी उसमें यहाँ प्रदेश इतने थे और फिर यहाँ इतने स्पर्धक बने, अभी यहाँ यहाँ 10 स्पर्धक बने तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो यहाँ अगर हमको स्पर्धक बढ़ाने हैं 12 बढ़ने हैं तो इसमें से प्रदेशों की संख्या कम होगी, हमको उतने ही प्रदेश रखने हैं ना। फिर से बढ़ती हूँ मैं, देखो क्या कहना चाहती हूँ मैं, वो मुझे चाहिए पीला, संख्या उतनी ही रखनी है और तो डिस्ट्रीब्यूशन उतने ही प्रदेशों में करना है ना हमको। कर्मों में क्या अलग अलग बात होती, कर्मों से इसका ये जीव के प्रदेश तो कांस्टेंट है, तो जीव के प्रदेश इतने हैं मान लेते हैं, तो पहले ऐसी रचना हुई थी, अब उतने ही जीव प्रदेशों में हमको ये स्पर्धकों को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जरा छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, तो उतने ही प्रदेशों में अधिक वर्गणा बनेगी और उसमें अधिक योग बनाना है तो पहले में कम हो गए, तो इस तरह से आगे आगे बढ़ेंगे, वो ख्याल में आती है, स्पर्धक बढ़े तो जघन्य स्पर्धक के पहली वर्गणा में जो वर्गों का प्रमाण है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि मिनिमम वाले कम है और मैक्सिमम वाले बढ़ते चले जाएंगे, सबकी शुरुआत तो जघन्य से ही शुरुआत करनी है, 1000 रुपए गिनना है तो भी 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे, 2000 गिनना है तो भी हमको 1, 2, 3, 4 ऐसे ही गिनना पड़ेगा, सबका जघन्य तो सेम होगा उसमें नंबर, यानी जघन्य वाले प्रदेश कम हो गए और अधिक वाले बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह से उसका अर्थ लेना। हाँ देखो यहाँ 8 नंबर के पृष्ठ पर द्वितीय योग स्थान में अंगुल की संख्या तो ये हो गया ना, उत्तरोत्तर हीन होते हैं, मिला आपको? क्योंकि अधिक अधिक योग शक्ति वाले जीव प्रदेशों का उत्तरोत्तर न्यून न्यून प्राप्त होना स्वाभाविक है, और इसलिए प्रथमादि योग स्थानों के स्पर्धकों से द्वितीयादि योग स्थानों के स्पर्धकों की उत्तरोत्तर संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार अनंत रूप निधा का विचार कर परम रूप निधा का विचार करते हैं, नंबर ऑफ स्पर्धक बढ़ते चले जाएंगे उनमें, क्योंकि देखो जीव के प्रदेश तो असंख्यात ही उतने ही लोक प्रमाण असंख्यात, हाँ तो उसमें पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कम में जघन्य करें, क्योंकि अधिक वाले और बढ़ेंगे ना ऊपर, उन्हीं प्रदेशों में से कुछ को अधिक करना है ना ऊपर। अब ये परम रूप निधान कितने स्थान जाकर क्या होगा उसके बाद यहाँ बताएंगे। देखो परम रूप निधा, परम रूप निधा ने थोड़े अधिक थोड़े अधिक थोड़े अधिक बताए हमने, अब हमको ज्यादा थोड़े अधिक होते होते उसमें क्या होता होगा ये बात हमको देखनी है, उसको कहेंगे परंपरा उपनिधा। परंपरोपनिधा की अपेक्षा जघन्य योग स्थान में जो स्पर्धक है, यानी जितने नंबर ऑफ स्पर्धक है, उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान जाकर स्पर्धकों की दूनी वृद्धि होती है। यानी वो टोटल स्थान भी कितने थे तो जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग है ना, इतने स्पर्धक थे तो उसमें इतने स्थान गए दो गुने हो गए, नंबर ऑफ स्पर्धक दो गुने हो गए, ये ना संख्या न स्पर्धकों की संख्या लेनी है यहाँ पर। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक दूनी दूनी वृद्धि जानना चाहिए। दूनी वृद्धि को क्या कहेंगे, एक गुणहानि द्विगुण वृद्धि स्थानांतर कहेंगे, तो उसी को कहते एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर, यानी कितने स्थान जाने पर योग दुगुना होता है तो उसको कहेंगे एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर, अपनी भाषा में एक गुणहानि। जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यानी इतने योग स्थान जाने पर योग दुगुना हो जाता है, और नाना योग द्विगुण वृद्धि हानि स्थानांतर पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, नाना गुणहानियों का प्रमाण, ऐसे दो गुना दो गुना दो गुना कितने बार होता है तो पल्ले के असंख्यात पे भाग बार होता है। तदनुसार नाना योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर स्तोक है, स्तोक यानी अल्प है, और इनसे एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर असंख्यात गुणे है, क्योंकि कितने स्थान जाने पर योग दुगुना होता है, फिर और दुगुना होता है, फिर और दुगुना होता है, ऐसे दुगुना दुगुना भी कितने बार हुआ तो पल्ले के असंख्यात पे भाग बार वो दुगुना हुआ, क्योंकि पहले हमने सारे योग स्थान देखे थे ना, एक से दूसरा भी पल्ले के असंख्यात पे भाग गुना है टोटल योग, फिर उससे असंख्यात गुना, इस तरह से हमने देखे थे। अब विशेषात पढ़ लेते, पहले अनंत रूप निधा में यह बतलाया था कि जयघन्य योग स्थान के स्पर्धकों से दूसरे योग स्थान में, तथा इसी प्रकार आगे आगे सुच्चंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्पर्धकों की वृद्धि होती जाती है, यानी प्रति योग स्थान में सुच्चंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ते हैं। अब यहाँ इस अनियोग द्वार में यह बतलाया गया है, इस प्रकार एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे आदि से चौथे आदि स्पर्धकों की वृद्धि होती हुई वह जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान जाने पर दूनी होती है। पहले हमने देखा ना 10 थे स्पर्धक, फिर 12 हुए, फिर 14 हुए, तो दो दो बढ़ते हुए, जब 10 के 20 हो जाए तो दुगुने हुए। तात्पर्य है प्रथम योग स्थान में जितने स्पर्धक होते हैं उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण योग स्थान आगे जाने पर वहां अंत में प्राप्त होने वाले योग स्थान में वे दूने हो जाते हैं। पुनः यहाँ अंत में प्राप्त होने वाले योग स्थान में जितने स्पर्धक होते हैं उनसे जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण योग स्थान जाने पर वहां अंत में प्राप्त होने वाले योग स्थान में वे दूने हो जाते, जैसे 10 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, 40 से 80 हुए, इस तरह। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक यह दूने दूने स्पर्धक होने का क्रम जान लेना चाहिए। इस प्रकार जहाँ जहाँ जाकर स्पर्धकों की दूनी दूनी वृद्धि हुई, ऐसे स्थानों का यदि योग किया जाए, यानी कितने बार दोगुना हुआ, तो वे पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये नाना द्विगुण वृद्धि स्थान है, जिसको नाना गुणहानि भी कहते हैं। और यह तो बतला ही आए है कि जघन्य योग स्थान में जितने स्पर्धक है उनसे जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण योग स्थान जाने पर वहाँ जो योग स्थान प्राप्त होता है उसमें दूने स्पर्धक होते हैं। ये एक योग द्विगुण वृद्धि स्थान है, इसलिए एक योग द्विगुण वृद्धि स्थान जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं, यह सिद्ध ही है। अतएव नाना द्विगुण वृद्धि स्थानों का अंतर नहीं, स्थानांतर चाहिए, जिसको हम नाना गुणहानि कहते हैं। नाना द्विगुण वृद्धि स्थानांतर आपने किया है करेक्शन। पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण होने से वह थोड़ा है, यानी उसका प्रमाण छोटा है, और एक योग द्विगुण वृद्धि रूप दो योग स्थानों के मध्य योग स्थानों का यदि अंतर अर्थात व्यवधान लिया जाए तो वह जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होता है। यानी दो गुना होता है तो उसमें कितने योग स्थान आते हैं उसकी संख्या। अतएव यह कहा नाना द्विगुण वृद्धि स्थानांतर थोड़ा है और एक योग द्विगुण वृद्धि स्थानांतर उससे असंख्यात गुना है, क्योंकि एक पल्लोपम में जितने समय होते हैं उससे जगत श्रेणी के आकाश प्रदेश असंख्यात गुणे होते हैं। ये तो समझ में आवे ऐसी बातें है ना, ये बहुत बड़ा असंख्यात है। अब यही रुकेंगे हम, आज बहुत हेवी हो गया क्या? ऐसे कर्मकांड में हुआ था अपना विषय, यहाँ फिर दोबारा जरा उसको पॉलिशिंग चाहिए। रुकते अभी यहाँ पर। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।